सिंघानिया फैमिली राजवंश मेंशन में डिनर के लिए आई हुई थी। अभिमान इस बात से पूरी तरह अनजान था। वो अक्सर रात के 11 बजे के बाद ही घर आता था, पर आज निशा ने उसे जल्दी आने को कहा तो वो रात 8 बजे ही घर पहुंच गया था। आकाश के फिर से घर से गायब होने की वजह से अभिमान थोड़ा लापरवाह हो गया था, वरना वो निशा को अकेले छोड़कर बिल्कुल नहीं जाता। जिस तरह से अचानक सिंघानिया फैमिली वहां डिनर के लिए आई थी, उससे अभिमान समझ गया था कि वे ज़रूर उसके और आशी की शादी के बारे में बात करने के लिए ही आए हैं। ऊपर से 3 दिन पहले आशुतोष ने उसे अपने घर उसकी और आशी की शादी के बारे में बात करने के लिए ही बुलाया था। अभिमान का शक अगले ही पल अपने आप दूर हो गया जब आशुतोष ने फिर से उसकी और आशी की शादी की तारीख रखने को कहा। अभिमान ने साफ मना कर दिया था तो आकाश उसे निशा का नाम लेकर ब्लैकमेल करने लगा। आकाश ने अभिमान से यही कहा कि अगर अभिमान आशी को तलाक देगा तो वो निशा को तलाक दे देगा। जैसे ही आकाश ने निशा को तलाक देने की बात कही, अभिमान ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली थी, तो वहीं निशा हैरानी से आंखें फाड़कर उसकी तरफ देख रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि आकाश अभिमान को उसका नाम लेकर ब्लैकमेल करेगा। साथ ही उसने अभिमान को प्रॉपर्टी से बेदखल करने की बात कही। इस मौके पर अगर अभिमान पीछे हटता तो अब तक की उसकी सारी प्लानिंग बेकार हो जाती। अभिमान को इस तरह निशा का नाम लेकर ब्लैकमेल करते देखकर आशुतोष और काजल को भी हैरानी हुई थी। आशुतोष ने नरम लहजे में कहा, मिस्टर राजवंश, हम आराम से बैठकर बात कर सकते हैं, इसमें आपकी और मिसेज राजवंश के तलाक की बात कहाँ से आ गई? आकाश आशुतोष की तरफ पलटा और जवाब में बोला, आशुतोष, इस मामले को मुझे मेरे तरीके से हैंडल करने दो। इन आजकल के बच्चों को हमने ज़्यादा छूट दे दी तो ये हमारी रिस्पेक्ट और वैल्यूज़ को भूल गए हैं। ये नहीं जानता, लेकिन इसकी मॉम और मेरी भी अरेंज मैरिज हुई थी, लेकिन फिर भी मैं बिना किसी शिकायत के इसे निभा रहा हूँ और अपनी पत्नी से प्यार भी करता हूँ। आकाश की बड़ी बड़ी बातें सुनकर निशा और अभिमान के चेहरे पर सार्कास्टिक स्माइल थी। उनका रिश्ता कैसा था ये अभिमान निशा के लाख छुपाने के बावजूद जानता था। आकाश ने आगे कहा, इसे ऐसे आशी का दर्द समझ नहीं आएगा। जब बात इसकी माँ पर आएगी तब पता चलेगा कि तलाक लेने के बाद एक औरत के दिल पर क्या गुजरती है। इसे राजवंश खानदान का नाम और मेरी प्रॉपर्टी मिल गई तो इसे लगता है कि इसे ये हक भी मिल गया कि ये कुछ भी करेगा, किसी का भी दिल दुखाएगा। जब इसके नाम के आगे ये राजवंश सरनेम और मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं रहेगी तब मैं देखता हूँ ये कैसे ये बड़ी बड़ी बातें करता है। अपनी तरफ से आशुतोष को समझाने के बाद आकाश अभिमान की तरफ पलटा और सख्त आवाज़ में बोला, तुम्हारे पास 5 मिनट हैं, सोच समझ कर फैसला लेना। मैं किसी लड़की के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा, चाहे फिर वो अन्याय करने वाला खुद मेरा इकलौता लाडला बेटा भी क्यों ना हो। आकाश के मुंह से ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर अभिमान का दिल किया कि वो ज़ोर से चिल्लाए और उसकी हकीकत उन सबको बता दे, पर वो खुद को अच्छे से काबू करके खड़ा था। अभिमान को आशी बिल्कुल पसंद नहीं थी, ऊपर से ये शादी भी उसकी मर्जी से नहीं हुई थी। राजवंश फैमिली को बर्बाद करने के लिए खुद को दांव पर लगाना सच में एक बड़ा फैसला था। आशी भी वहीं पर खड़ी हुई थी और वो अभिमान के चेहरे की तरफ देख रही थी। वो तृप्ति से मिलने नहीं जा पाई थी और उसने अभिमान का बहाना बनाया था। आशी नहीं जानती थी कि तृप्ति और आकाश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तृप्ति ने आशी की मुसीबत को एक पल में ख़त्म कर दिया था। आशी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, मानना पड़ेगा आपको, दूर बैठे हुए भी आपने इतना बड़ा काम कर दिया। जो चीज़ मैं पिछले 5 सालों में नहीं कर पाई आपने 5 घंटे में कर दिया। सच कहूँ तो आपने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, लेकिन आपके सैक्रिफाइस की मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे अच्छी लाइफ देने के लिए आप अब तक मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। अब तक मैंने आपसे मिलने का नहीं सोचा था, लेकिन अब ये सब सॉर्ट होते ही मैं आपसे मिलने ज़रूर आऊँगी। अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे अभिमान, तुम जानते नहीं हो तृप्ति बजाज क्या चीज़ है। अगर उसने किसी मामले में हाथ डाला है तो नाकामयाबी का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहनी ही होगी। आशी तृप्ति की वजह से काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। वहीं राजवंश फैमिली भी कहीं ना कहीं जानती थी कि अब अभिमान अपने कदम पीछे नहीं ले पाएगा। अभिमान चुपचाप वहां पर खड़ा हुआ था, आकाश घड़ी के अंदर देख रहा था। जैसे ही 5 मिनट पूरे होने को आए, आकाश ने निशा की तरफ देखा और कहा, तुमने सच में मेरे बेटे के संस्कार खराब कर दिए। बाकी सबका पता नहीं था, लेकिन इसे तो अपनी माँ की जिंदगी तक की परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे जब तुम इस उम्र में तलाक लोगी? निशा की आंखों में आंसू आ गए थे। वो अभिमान को भी फोर्स नहीं करना चाहती थी, और जिस तरह से आकाश जबरदस्ती आशी और अभिमान को साथ में बांधना चाहता था उसे बुरा लग रहा था। निशा ने अभिमान की तरफ देखा और धीरे से नामे सिर हिला दिया था। वो सबके सामने कुछ बोल नहीं सकती थी, लेकिन उसके मन में काफ़ी कुछ चल रहा था। उसने मन ही मन कहा, प्लीज़ मना कर दो, मेरे लिए एक बार फिर अपनी खुशियों को दांव पर मत लगाओ। तुम मुझसे कितना भी झूठ क्यों ना बोलो, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि ये इंसान मुझसे प्यार नहीं करता और अब मेरा नाम लेकर तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। जिस तरह से तुम्हें ये फोर्स कर रहे हैं, ज़रूर बात कुछ और है।
तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, आकाश ने सिर हिलाकर कहा और अपनी घड़ी को अभिमान के सामने कर दिया था। सोचा नहीं था कि तुम एक बार फिर सेल्फिश हो जाओगे। हमें लगता था कि तुम अपनी मॉम से प्यार करते हो, पर आज तुमने फिर सिर्फ खुद को चुना है अभिमान, सिद्धांत ने तंज भरे लहजे में कहा। इससे पहले कि कोई और कुछ कहकर अभिमान पर ताना मारता, अभिमान ने सर्द आवाज में कहा, मैं आशी से सबके सामने शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोलते हुए अभिमान आशी की तरफ देख रहा था। उसने ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर किया था और ये उसकी आवाज से साफ जाहिर हो रहा था। अभिमान के हाँ कहते ही आकाश के चेहरे पर ईविल स्माइल थी, तो वहीं आशी भी धीरे से मुस्कुराई। आकाश अभिमान के पास आया और उसका कंधा सहलाकर बोला, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारे साथ सख्ती कर रहा हूँ, लेकिन कई बार पेरेंट्स को अपने बच्चों को डांटकर ही समझाना पड़ता है। जब तुम्हारी मॉम से मेरी शादी हुई थी, तब मैं भी तुम्हारी दादी से गुस्सा हुआ था, क्योंकि निशा उनकी पसंद थी। कई दिनों तक मैंने उनसे बात भी नहीं की थी, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आने लगा कि निशा मेरे लिए एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर है। इतने सालों से काम की वजह से मैं बाहर अटका रहा, लेकिन निशा ने कभी शिकायत नहीं की और आज भी प्यार से मेरा इंतजार कर रही है। आशी भी बिल्कुल इसी की तरह है। तुम्हारे इतने रूड बिहेवियर के बावजूद वो तुमसे प्यार करती है, तुम्हारे साथ रहना चाहती है। कल ये बात तुम्हें भी समझ आ जाएगी। अभिमान के लिए वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उन लोगों की एक एक बातें उसके कान में तीर की तरह लग रही थी। गौतमी जल्दी से अंदर गई और मिठाई के डब्बे के साथ बाहर निकली। उन्होंने जबरदस्ती निशा के मुंह में मिठाई का टुकड़ा ठूंसते हुए कहा, मुबारक हो निशा, अब तो तुम भी सास बनने वाली हो। बहुत किस्मत वाली हो जो तुम्हें पलक जैसी नहीं बल्कि आशी जैसी बहू मिलेगी। चलो अब जब सब सॉल्व हो ही गया है तो साथ में डिनर करते हैं, तुम भी अभी ज्वाइन करो अभिमान, काजल ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। मैंने कहा ना कि मैं बाहर से खाकर आया हूँ और ऊपर से काफी थक भी गया हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए, अभिमान ने भारी आवाज में कहा और तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ते हुए वहां से जाने लगा।
आशी अभिमान से बात करने के लिए उसके पीछे जाना चाहती थी, लेकिन आशुतोष ने उसका हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो गुस्से में लग रहा है, अगर ऐसे में उसने तुमसे बदतमीजी से बात की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा, इट विल बी बेटर कि तुम यहीं पर रहो। आशुतोष की बात मानकर आशी वहीं पर रुक गई थी। वहीं अभिमान ऊपर अपने कमरे में था। रूम में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और कसकर दरवाजे पर जोरदार मुक्का मारा। नीचे जिस तरह से अभिमान के साथ ज़बरदस्ती की गई, ऊपर से वो कुछ बोल भी नहीं पाया। अपनी भड़ास निकालने के लिए वो जोर से चिल्लाया, आई हेट यू आशिका सिंघानिया, मुझे नफ़रत है उस लम्हे से जिस वक्त से तुम मेरी पत्नी बनी। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरे साथ रहने का और मुझसे शादी निभाने का। तुम्हारी ज़िंदगी नरक नहीं बना दी तो मेरा नाम भी अभिमान राजवंश नहीं। जिन लोगों का सहारा लेकर तुमने आज मुझे ब्लैकमेल किया है, सबसे पहले उनका असली चेहरा मुझे सबके सामने लाना है, अभिमान ने तेज सांस लेते हुए कहा। इस वक्त उसे सबसे ज्यादा आकाश पर गुस्सा आ रहा था, जो नीचे एथिक्स की बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। अभिमान खुली हवा में सांस लेने के लिए बैल्कनी के पास आया और उसने तुरंत अपने उस आदमी को कॉल किया जिसको उसने स्काई के पीछे लगा रखा था। मैंने तुम्हें उस लड़की की डिटेल निकालने के लिए कहा था जिसके साथ मेरा बाप शादी करने वाला था, अभिमान ने सख्त लहजे में कहा। मैं आप ही के काम में लगा हुआ था, लेकिन यहाँ काफ़ी कुछ हो गया। एक तो कुछ बताने का मौका भी नहीं मिला। मैंने कहा था ना कि किसी वजह से उस लड़की की शादी नहीं हो पाई थी और फिर वो लड़की भाग गई। उसी का पीछा करते हुए मिस्टर स्काई मुंबई पहुँचे हैं, होना हो वो लड़की मुंबई में है। कॉल के दूसरी तरफ से उस आदमी की आवाज़ आई। उसकी बात सुनकर अभिमान हैरान रह गया था। पहले तो उसे भी समझ नहीं आया था कि अचानक आकाश मुंबई क्यों चला आया था। इतने सालों में उसे कभी उनके परिवार की याद नहीं आई। फिर ऐसा क्या हो गया था जिसने उसे मुंबई आने पर मजबूर कर दिया था? अच्छा, तो ये वजह है उसके वापस आने की। कुछ भी करके मुझे उस लड़की की सारी डिटेल्स भेजो रॉकी, और तुम भी मुंबई आ जाओ। मुझे मेरे बाप से पहले उस लड़की को ढूंढना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है वो किसी से भी शादी करे, लेकिन वो मुझे मजबूर नहीं कर सकते हैं, अभिमान ने जवाब दिया। तब तो आपके पास अच्छा मौका है अपनी बात मनवाने का। आप उस लड़की को पहले ढूंढ लीजिए और फिर अपने बाप के हवाले कर दीजिएगा। बदले में शर्त रख दीजिएगा कि आप उनकी मर्जी से शादी नहीं करने वाले। जो आदमी उसके पीछे मुंबई तक आ गया, ज़रूर वो उसके लिए खास होगी, रॉकी बोला। अभिमान ने उसकी बात पर हाँ भरी और फिर कॉल कट कर दिया था। उसने सिर हिलाकर खुद से कहा, मुझे सिर्फ इस शादी से ही पीछे नहीं हटना, सच में अपनी मॉम को आपसे आज़ाद करवाना है। और मेरी मॉम की आज़ादी का एक ही रास्ता है, उस लड़की का मिलना। अब वही हमारी किस्मत बदलेगी। आशिका की सच्चाई से अनजान अभिमान ने यही फैसला लिया था कि वो जल्द से जल्द उस लड़की को ढूंढने का जिससे आकाश शादी करना चाहता है, और उसके बाद आकाश से अपनी सारी शर्तें मनवाएगा।